1000 वॉट का है और तुम्हारी जो लाफ्टर है वो बड़ी इन्फेक्शियस है और तुम्हारी एनर्जी जो है उसको तो मैं मैच ही नहीं कर सकता हूं। योर एनर्जी फील्स लाइक 5000 शेड्स ऑफ लव। इनके जो हस्बैंड हैं अजय देवगन साहब, उन्होंने भी बड़े प्यारे इनको आज मैसेजेस दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि तुम्हारा लाफ्टर बड़ा कंटेजियस है, तुम्हारा प्यार और एनर्जी जो है हमारी फैमिली के लिए जो है उसके कैचअप करना उसके लिए मुश्किल है। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत सारे प्रैंक्स करता हूं लेकिन फिर भी तुम उसको माइंड नहीं करती हो। यू आर द जॉय ऑफ आवर लाइव्स एंड सेलिब्रेटिंग यू टूडे एंड ऑलवेज हैप्पीएस्ट बर्थडे। तो जी बड़े प्यारे मैसेजेस मिले हैं जी इनको काजोल साहिबा को। सुनीति चौहान जो हैं उन्होंने जो है एक इंटरव्यू दे रही थी और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं खासतौर पे म्यूजिक आर्टिस्ट बड़े ही धांसू किस्म के हैं और पाकिस्तान का म्यूजिक बड़ा धांसू किस्म का है। वो कहती हैं जी कि मैं बहुत सारे टैलेंटेड पाकिस्तानी म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किए हैं और मुझे तो कोई डिफरेंस अपने में और उनमें नहीं लगा। हमारी लैंग्वेज, हमारे लुक्स, हमारा फूड, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशन सब एक जैसे हैं। चाहे मैं उनसे कनाडा में मिलती हूं, चाहे यूएस में, चाहे यूके में, तो मुझे मोर एंड मोर आई मीट देम आई फाइंड आउट कि हम बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, हमारे बीच में डिफरेंसेस नहीं है। और ठीक है शायद हमारे पाकिस्तान की फिल्में इंडिया की फिल्मों का मैच ना कर सकें लेकिन म्यूजिक में वो हमसे बहुत 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 आगे हैं, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा लव और डेडिकेशन से काम करते हैं। खासतौर पर उन्होंने कहा जी कि जो म्यूजिक कोक स्टूडियो पाकिस्तान डेवलप कर रहा है वो तो ब्रिलियंट, इनक्रेडिबल और फैंटेस्टिक है। उन्होंने कहा मैंने अभी रिसेंटली गाना सुना है तुरी जांदी बाय हसन रहीम एंड शाजिया मंसूर एंड इट इज ऑसम। तो ऐसी उन्होंने कुछ बहती कहीं। वैसे इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान में जिस वक्त म्यूजिक बन रहा है बहुत ही वाकई कैंट किस्म का है। सुभाष घाई साहब जो हैं वो अब नजर आएंगे द इनविंसिबल्स के नए एपिसोड के अंदर, जो सीजन टू अब अरबाज खान के साथ शुरू हुआ हुआ है उसके अंदर। तो उसके जो कुछ क्लिप्स सामने आए हैं उसमें वो कुछ स्टार्स के बारे में पूछ रहे हैं, जिसके के बारे में अरबाज पूछता है कि किस तरह के स्टार्स होते हैं। तो वो कहता है जी एक तो नॉन स्टार्स होते हैं और एक बैड स्टार्स होते हैं। वो कहता है जैकी श्रॉफ जो है बैड स्टार्स में आता है, अनिल कपूर गुड स्टार्स में आता है और शत्रुघ्न सिन्हा जो है ओवर कॉन्फिडेंट स्टार्स में आता है। उसका हमेशा से प्रॉब्लम यह रहा कि वो हमेशा जो है वो लेट आता था सेट्स पे, कभी वक्त पे नहीं आता था। इन्होंने इनके साथ काम किया था जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के साथ, जो इनकी 1989 बड़ी मशहूर फिल्म आई थी राम लखन उसमें, और शत्रुघ्न के साथ काम किया था काली चरण और विश्वनाथ जैसी फिल्मों में। फिर उन्होंने कहा जी कि मेरी शाहरुख खान के साथ बहुत ज्यादा जो है वो लड़ाई शुरू हो गई थी परदेश के बाद, और कर्ज के बाद ऋषि कपूर के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने अपनी जिंदगी का रूल बनाया कि मैं कभी भी बिग नेम्स के साथ फिल्म में काम नहीं करूंगा क्योंकि फिर मैं क्रिएटिव कंट्रोल नहीं रख सकता हूं फिल्मों के ऊपर। ठीक है जी, ऐसे है। और पीसीबी जो है जी वो इंट्रोड्यूस कर रही है अब चैंपियंस डोमेस्टिक टूर्नामेंट, जिसमें कि वो कहते हैं जी कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। इसमें पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब along with PCB COO सलमान नासिर एंड न्यूली अपॉइंटेड एडवाइजर ऑन क्रिकेट अफेयर्स वकार यूनुस के साथ आज बात कर रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। उन्होंने कहा जी कि हम अब जो ये चैंपियंस टूर्नामेंट शुरू करने वाले हैं इसके अंदर डे कप होएगा, T20 कप होएगा, फर्स्ट क्लास कप होएगा, जिसमें के जो टीम है उनको जो है वो यानी कि जो नए लड़के हैं उनको अपने स्किल्स के ऊपर काम करने का जो है वो टाइम मिलेगा। वो कहते हैं जी कि ये जो करंट टीम की रैंकिंग है ये इनके अपने पोटेंशियल से बहुत ज्यादा लो है और हमारी लेगेसी जो थी बहुत हाई थी उससे भी लो है। इनके जो टूर्नामेंट्स हैं डोमेस्टिक लेवल पे वो इनको एक्सपीरियंस देंगे टू प्ले विद इंटेंसिटी एट द इंटरनेशनल क्रिकेट सर्किट। तो ये आज उन्होंने बातें की। आईसीसी जो है जी उसने अप्रूव कर दिया है तकरीबन 70 मिलियन यूएस डॉलर का बजट पाकिस्तान के लिए टू होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नेक्स्ट ईयर फ्रॉम फरवरी एंड मार्च। और उसके लिए उन्होंने कहा जी कि हमने अपने स्केड्यूल्स जो हैं आपके वो भी डिफरेंट क्रिकेट टीम्स को भेज दिए हैं और इसके अंदर जो मैचेस और वार्म अप्स और दूसरी एक्टिविटीज हैं सबका सब हमने जो है वो स्केड्यूल कर लिया है। इसके अलावा जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी स्केड्यूल भेज दिया गया है। इन्होंने कहा जी कि हम अब कंसल्टेशंस करेंगे तमाम बोर्ड्स के साथ और प्रपोजल्स फाइनल करेंगे। जो सपोर्ट पीरियड है इन मैचेस का वो फरवरी 12 से 18 के बीच में रहेगा 2025 में यानी कि नेक्स्ट ईयर, और जो ट्रॉफी मैचेस हैं वो शुरू होंगे फरवरी 19 एंड मार्च 9 के बीच में। मार्च 10 जो है वो रिजर्व डे रखा हुआ है फाइनल के लिए कि अगर मार्च 9 को कुछ बारिश या कुछ और प्रॉब्लम आई तो मार्च 10 को भी फिर खेला जा सकेगा। और जी नोवाक जोकोविच 37 इयर्स एज है और बहुत ही जबरदस्त किस्म का उन्होंने मैच खेला पेरिस ओलंपिक्स में और हराया कार्लोस अल्काज़ार को एर्का रेज को और अपना मेडन ओलंपिक टाइटल भी जीता. ही हैज बिकम द फिफ्थ प्लेयर टू कंप्लीट हिज करियर विद गोल्डन स्लैम. सर्बिया के रहने वाले हैं और जबरदस्त किस्म का इन्होंने ये जो फाइनल खेला इस पे रोनाल्ड गैरोस पे टू एड ओलंपिक गोल्ड टू हिज 24 ग्रैंड स्लैम विन्स. एंड ही ज्वाइंस आंद्रे अगासी, राफेल नडाल, स्टेफी ग्राफ, सरीना विलियम्स. ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने के 4 ग्रैंड स्लैम्स भी जीते हैं और ओलंपिक सिंगल गोल्ड भी हैं, लेकिन इन्होंने जो है इनसे जरा आगे हैं क्योंकि इनके विन्स जो है जरा ज्यादा जाहिर हैं. ये जो है ही ऑल्सो हैज बिकम द ओल्डेस्ट सिंगल्स चैंपियन सिंस टेनिस रिटर्न टू ओलंपिक्स इन 1988. इससे पहले ये जो है इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता था और विमिल्डन भी अभी जीता है जस्ट फ्यू डेज बैक. और जिस वक्त ओलंपिक पे इन्होंने जीता अपना ये गोल्ड मेडल तो इन्होंने अपना सर्बिया का झंडा अपने गिर्द लपेटा था और फिर उसके बाद ये प्लेयर्स बॉक्स में जाके इन्होंने एम्ब्रेस किया अपनी वाइफ और बच्चों को भी. और जनाब हमारे कनाडा के ईथन कैट्सबर्ग जो हैं फ्रॉम नैनेमो बीसी, उन्होंने भी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है. ही वन गोल्ड इन मेन्स हैमर थ्रो एट पेरिस ओलंपिक्स. ही हैज बिकम द फर्स्ट कनेडियन टू विन ओलंपिक गोल्ड सिंस डंकन गिल्स, जिन्होंने के सिल्वर जीता था 1912 के स्टॉकहोम गेम्स में, और कॉन वॉल्श जिन्होंने के ब्रॉन्ज जीता था एट 1908 लंदन ओलंपिक्स जो थी उसके अंदर. तो इस दफा इन्होंने गोल्ड जीता है.
हाँ जी, 10 गोल्ड हो गया.
हाँ जी, और इसके बाद जनाब हम अपनी शुरू करेंगे.
हम ऐसा करते हैं टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक ले लेते हैं.
यस बिल्कुल.
और टॉप ऑफ द आवर के ब्रेक के बाद जो है फिर आपसे दोबारा जुड़ेंगे. जबकि मेडल्स की बात हो रही है तो न्यूज आपको मेडल्स की भी दे देते हैं.
हाँ, दे देंगे.
और आज जो है वो पेरिस ओलंपिक्स 2024 के मेडल जो है उसके हिसाब से चाइना नंबर 1 पर है 21 गोल्ड मेडल के साथ. उसके बाद हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक बस 20-21, वो कहते हैं 20-21 का फर्क है बस, तो 20 पर आ गए सेकंड पोजीशन पे. थर्ड पोजीशन पे जो हासिल कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने 13 मेडल के साथ. होस्ट कंट्री फ्रांस 12 मेडल गोल्ड मेडल के साथ चौथे नंबर पे. पांचवें नंबर पर जो है ग्रेट ब्रिटेन है. इसके बाद कनाडा हमारा 5 गोल्ड मेडल के साथ 11वें पायदान पर है.
अच्छा, नीचे 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 जाता जा रहा है. व्हाट इज दिस? पहले 9 पे था, फिर 10 पे, आज 11th पे आ गया है.
आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे.
हाँ, कोई नहीं कोई नहीं.
अभी तो इतना इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या.
रोता
है. हमारा कनाडा जो है वो 5 गोल्ड मेडल के साथ 5 गोल्ड मेडल के साथ 11वें नंबर पर है.
रोता है क्या और खोता है क्या.
तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा रो लेते हैं.
हाँ.
और फिर उसके बाद खो लेते हैं.
हाँ.
फिर हम आएंगे आपके साथ एक रिपोर्ट भी देंगे. आपको पता है कि खातून जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर वो उड़कर जो हैं वो पड़ोस मुल्क गई हैं. उस पर एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर लेंगे. और जो आज का जो 5 अगस्त में जो है आर्टिकल 370
हटा दिया गया था,
तो हटा गया, उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे. आपने हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना. 4166201778 हमारा नंबर है. तो टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक, फिर वापस आते हैं.
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो.
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता. CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं. इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन. अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें. CIBC.com/cashpickup पर जाएं. शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू. CIBC, एम्बिशंस मेड रियल.
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन. आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे. ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यू थ्रू आउट ओंटारियो. नो अपॉइंटमेंट नीडेड. ड्राइव थ्रू फैसिलिटी. वन स्टॉप शॉप. अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी. क्विक ट्रक ल्यू 519-622-0660. quicktruckcube.com.
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com, ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900।
ਚਾਂਦਨੀ
ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ,
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚੋਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, sound system innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye 4372188734. chandnihalls.ca.
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours,
वेलकम बैक तमाम सामीन का जो 770 AM डाइल पर सुन रहे हैं प्रोग्राम साज आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद। जनाब आपका और हमारा सवा आठ बजे जनाब माजरत चाहता हूँ, ये स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। जबान होती है ना, बड़े कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर इंसान अपनी जबान पर कंट्रोल कर लेना बस जनाब, उसकी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जनाब 8:15 तक आपको और हमारे
कुत्ते।
हाँ ये अभी मैं अभी पूछता हूँ सवाल पूछता हूँ
अभी जरा ये स्पेशल,
मैं एक दो स्पॉन्सर्स बता दूँ, स्पेशल रिपोर्ट दे दें और उसके बाद करते हैं। जनाब दरहम रीजन में एक रंगारंग प्रोग्राम आ रहा है, समर फेस्ट 2024, 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये होने जा रहा है। दोपहर 1 से लेकर रात 11 बजे तक ये रंगारंग प्रोग्राम जो है वो चलेगा। और 31 अगस्त को जनाब हमारे प्यारे अहमद जानसेब साहब आ रहे हैं। जनाब बिल्कुल आपके शहर में अहमद जानसेब साहब आ रहे हैं, लाइव कॉन्सर्ट आपके लिए पेश करेंगे 31 अगस्त को। और 1 सितंबर को मौजम अली खान साहब गजल जो है वो आप गजल प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे और वो ट्रिब्यूट देंगे जनाब जगजीत सिंह साहब को। ये इवेंट बिल्कुल फ्री है, यहां पार्किंग भी फ्री है और यहां पर एंट्री भी आपकी फ्री है। आपने पहुंचना है 500 विक्टोरिया स्ट्रीट वेस्ट विडबी में 31 अगस्त और 1 सितंबर को। अगर आपने कोई स्टॉल बुक कराना है या स्पॉन्सरशिप के लिए कोई आपने कॉल करनी है तो एक नंबर देते हैं 4168971683, 8971683 पर कॉल करके कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब एक गवर्नमेंट की ग्रांट आ रही है और वो फैमिलीज के लिए, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। उसकी शराइत यह है कि आपका बच्चा कम से कम यानी एक या एक से ज्यादा कम से कम 12 या 12 साल की उम्र से कम हो और आपकी सालाना इनकम $60,000 हो और आपने कोई भी गवर्नमेंट की वेलफेयर ना ली हो तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं $12,000 से लेकर $60,000 तक की ग्रांट। जनाब बिल्कुल ये ग्रांट है, ये लोन नहीं है, इसे आपने वापस नहीं करना। अगर आप समझते हैं कि आप इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं और इसके एलिजिबल हैं तो आप कॉल कीजिए शावेज खान को 6477690241 6477690241 शावेज खान। इसके अलावा जनाब आपको पता है कि ये जुलाई अगस्त सितंबर यूजुअली लोग जो हैं वो मूविंग करते हैं घर की, अपार्टमेंट की या आपकी कोई और कमर्शियल मूविंग है, तो आपको एक नाम देते हैं 786 मूविंग प्लस और यहां होते हैं अमीन साहब। इनका नंबर है 416-786-6000 इनका नंबर है। वो 24 आवर सर्विस देते हैं 7 days अ वीक और वो कहते हैं कि हमारे पास अवर्ली पैकेज भी है और आपके साथ फ्लैट रेट पर भी डील की जा सकती है। आपके तमाम ही कीमती फर्नीचर्स को वो श्रिंक रैप बिल्कुल ही फ्री करके देंगे। तो अगर आपकी मूविंग आ रही है तो 786 मूविंग प्लस के अमीन साहब को कॉल कीजिए 416-786-6000 इनका नंबर है। चले जनाब एक जो है आपको पता है आज सारा दिन ही ये खबर जो है वो गर्म रही और जिस तरीके से जो है वो शेख हसीना साहिबा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर फ्लाई कर गई हैं पड़ोसी मुल्क भारत में और इसके पीछे क्या सिलसिला रहा आपको पता है, सारा प्रोटेस्ट चलता रहा पिछले 2-3 हफ्तों से तकरीबन महीनों से, वो सब आपके साथ एक रिपोर्ट के सूरत में पेश की जाएगी। इसके अलावा 5th of August यानी जो कश्मीर में आर्टिकल 370 नाफिज किया गया उस पर
खत्म किया गया
बल्कि कह लें उनको स्पेशल जो दर्जा था उसको खत्म किया, तो उस पर भी रिपोर्ट आपके साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप भी अगर जुड़ना चाहें आगे तो 416-620-1778। तो चलते हैं हमारी आज की रिपोर्ट पर।
जी हाँ जी, पहली जो हमारी रिपोर्ट है वो अगेन जो है वो हमारे कुछ सुनने वाले नाराज हो जाते हैं, शाजिया जी आप हमेशा जो है वो ऐसे क्यों सुनाते हो। अच्छा जी, अगेन आई एम टेलिंग यू द सोर्स, ये स्पेशल रिपोर्ट हमारी जो है ये मैंने द वायर से ली है, दिस इज रिटन बाय अनुराधा भासिन। क्योंकि मैंने बहुत सारी जो आज रिपोर्ट्स पढ़ी आर्टिकल 370 के ऊपर वो तो बस वही थी, वो जो यूजुअल स्टोरीज थी कि भाई आर्टिकल 370 रिवोक किया गया, खत्म किया, उनका स्पेशल स्टेटस ले लिया गया, मोदी गवर्नमेंट ने ये बड़ा कमाल किया था और उसके ऊपर बड़े जो हैं अब डेवलपमेंट्स वहां पे चल रहे हैं कश्मीर के अंदर, जम्मू और कश्मीर में। तो ये जब रिपोर्ट मेरी नजर से पूछी तो ये बहुत ही बिल्कुल ही डायगनली जो है ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू था, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो मैंने कहा चलो जी इसको उठाते हैं क्योंकि हम आपको तो पता है कि यूजुअल चीज नहीं करना चाहते, हम तो जरा थोड़ा सा वक्री चीज करना चाहते हैं, डिफरेंट चीज करना चाहते हैं। तो जनाब अगेन द सोर्स इज द वायर और अनुराधा भासिन की ये स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है ये, लेकिन मैंने जो उसके अंदर से जो छोटी सी निकाली है आज 5th of August के लिए। 5 साल पहले मोदी गवर्नमेंट जो थी वो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट उन्होंने 370 जो था उसको रिवोक किया और ये जो जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड था इसको खत्म करते हुए इसको दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया, दो यूनियन टेरिटोरीज बनाई, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। 5 साल के बाद जी इन्होंने, और उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि हम ये जो स्पेशल स्टेटस इसका खत्म कर रहे हैं क्योंकि यहां पे हम स्वीपिंग चेंजेस लेकर आना चाहते हैं और यहां पे डेवलपमेंट लेकर आना चाहते हैं, और उसके बाद फिर अगले कई साल वो यही कहते रहे कि बहुत सारी डेवलपमेंट आ रही है, कश्मीरियों की हालत बहुत अच्छी हो रही है। अनुराधा भासिन की ये स्टोरी कहती है कि ये जो स्वीपिंग चेंजेस आए थे इसके अंदर राइट्स अब्यूजेस वैसे के वैसे ही हैं और अब जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब तीसरी टर्म लेकर आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब रहेगा। भासिन साहब का कहना है कि इसका मतलब वही रहेगा कि यहां पे इफेक्टिवली ये जो सिस्टमैटिक और कोएर्सिव कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का बीजेपी की वो जारी रहेगा। यहां पे जो है इंटरनेशनली एक्लेम्ड ऑथर जो है अनुराधा अरुंधति रॉय और फॉर्मर लॉ के जो प्रोफेसर हैं शेख शौकत हुसैन, उनको ट्राई किया जा रहा है अंडर एंटी टेररिज्म लॉ। 10 साल जो पहले इन्होंने स्पीच की थी कश्मीर पे उसके ऊपर, तो चेंजेस तो जो ये कह रहे थे स्वीपिंग आएंगी वो तो नहीं आई हैं। इसमें यह भी पता चलता है कि एक तो न्यू दिल्ली की भोकलाहट है और दूसरा ये भी लगता है कि ये जो इन्होंने जो है स्टेटहुड नहीं इसका खत्म किया, इसको स्ट्रैंगलहुड कर दिया है, यानी कि इसका बिल्कुल ही जो मैं आमिर को कहती हूँ ना गिच्ची दबाना, बिल्कुल कश्मीर की गिच्ची इन्होंने जो है वो दबा दी है। वो कहते हैं जी कि ये जो वर्ड के है ये इस वर्ड के खिलाफ ही इंडिया का क्रैकडाउन जो है बीजेपी की गवर्नमेंट का, यानी के जो है कश्मीर के लिए स्टैंड करता है, आई मीन ऑफकोर्स। तो वो जो है ना सिर्फ आम लोगों के बल्कि अब तो एकेडेमिक्स जो हैं और एकेडेमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ भी यूज किया जा रहा है। और ये बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया है इस वक्त कश्मीर में कि ना तो आप ओरली कोई बात करेंगे ना तो आप रिटन तौर पर कोई बात जो है कश्मीर के ऊपर कर सकते हैं। उन्होंने कहा अभी अनुराधा साहब कहती हैं अभी लास्ट वीक ही साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो थी उसके खिलाफ जो है एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है क्योंकि उन्होंने एक रिसर्च प्रपोजल दिया था कश्मीर के एथनोग्राफी के ऊपर और उसमें उन्होंने कोट किया था चॉम्स्की के रिमार्क्स जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही एंटी इंडिया और एंटी स्टेट्स हैं। ये जो इनटॉलरेंस है जिसके ऊपर कश्मीरी लोग डे टू डे बेसिस पे रहते हैं वो कॉन्स्टेंटली जो चलती जा रही है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैवी हैंडेडनेस है वो भी जारी है। उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त से 2019 से इन्होंने ये खत्म किया है ना तो वहां पे कोई स्पीचेस की जा सकती हैं ना तो वहां पे जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है वो खुल के बात की जा करती है, अगर वो करती है तो उसको हाउस अरेस्ट या दूसरी तरह से उसको डिटेन किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी अभी इसी जुलाई में जो कहा गया था जी कि बहुत सारी चीजें जो हैं ठीक हो रही हैं और सब चंगा नहीं सी जो कि मोदी जी कहते हैं, 3 जुलाई को प्रोमिनेंट लॉयर्स जो हैं नजीर अहमद रोंगा और अशरफ मीर और मियां मुजफ्फर जो हैं उनको पनिशमेंट्स दी गई हैं अंडर द ड्रेकोनियन पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्योंकि ये उन लोगों के केसेस लड़े थे जिनको के इलीगली डिटेन करके जेलों में डाला जाता है। इसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि सीनियर लॉयर मियां कयूम साहब जो हैं और बाबर कादरी मर्डर केस के ऊपर जो वो काम कर रहे थे उनको भी जो डिटेन किया गया है क्योंकि उसको उठाया गया था और उसको मार दिया गया था जिसके बाद उसकी फैमिली ने अलेज किया था कि जी ये या तो इंडियन पुलिस या तो इंडियन मिलिट्री के लोग जो हैं इसके अंदर शामिल हैं और उन्होंने इसको जेल के अंदर मारा है। तो ये जो लॉयर उनका केस लड़े थे उन तब को डिटेन किया गया। उन्होंने कहा जी कि ये जो जम्मू और कश्मीर की जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे थे जो कि सिंस 2019 नहीं हुए थे उसको फिर से ब्लॉक किया गया है, हालांकि हर डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो बार काउंसिल्स हैं वो अपने इलेक्शंस होल्ड करती हैं और अपना एक प्रेसिडेंट जो है वो चुनती हैं जो कि एक्सपोज करता है सिस्टमैटिक असॉल्ट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ऑन इवन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सिविल लिबर्टीज इन कश्मीर। यानी कि कहने को तो हिंदुस्तान जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है लेकिन ना तो वहां पे कश्मीर जब आ जाता है तो ना तो लीगल रिप्रेजेंटेशन चलती है ना सिविल लिबर्टीज उनको दी जाती हैं बल्कि हर तरह की डिसेंटिंग वॉइसेज और जो क्रिटिक्स हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, इंटेरोगेट किया जाता है, उनके घरों पे और ऑफिसेज में रेड की जाती है, रिपीटेडली उनसे वेरिफिकेशन मांगे जाते हैं, उनको जो है जॉब से निकाला जाता है और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं अटैच यानी कि उनके ऊपर जो है वो कब्जा स्टेट कर लेती है छोटे छोटे मैटर्स के होते हुए। इसके साथ साथ वो जर्नलिस्ट जो कि आवाज उठाते हैं 370 के हक में कि फिर से स्टेटहुड जो है वो लौटानी चाहिए, जैसे कि अभी जो बहुत सारे जो लीडर्स हैं कश्मीर के वो भी कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड को वापस लाने तक लड़ाई अपनी जारी रखेंगे, उन तक को जर्नलिस्टों को लॉयर्स को पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी के जो एक्टिविस्ट हैं उनको पकड़ा जाता है और उनको जो है टेरर चार्जेस उनके ऊपर लगाए जाते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के और दूसरे केसेस में उनको फंसाया जाता है। इसलिए इस वक्त भी जम्मू और कश्मीर के अंदर बेतहाशा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और डेमोक्रेसी की ब्रीच है जो कि यहां पे देखी जा सकती है। ह्यूमन राइट डिफेंडर्स लाइक खुर्रम परवेज जो हैं वो अभी तक जेल में हैं जो कि कहते थे कि लोगों को बोलने दो और लोगों के जो हैं राइट्स के ऊपर उनको बात करने दो, तो इस तरह वो कह रहे हैं जी कि इन्फॉर्मेशन को हौले हौले अंडर द गार्ब ऑफ सीक्रेसी बिल्कुल ही दफनाया जा रहा है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, उन लोगों को सब्जुकेट किया जाता है, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। वो कहते हैं जी कि जम्मू और कश्मीर में 14 मिलियन लोग हैं, इन 14 मिलियन लोगों का हक जो है आप कब तक जो है ये खत्म करेंगे, ये मैटर जो है ये हाथ से ऐसा ना हो कि ये निकल जाए, ये सिर्फ जो है एक मसला नहीं है बल्कि ये जो कश्मीरी हैं इनको खत्म करने की एक कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा जी कि ये जो कश्मीर के अंदर इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है वो बिल्कुल भी जो शो करती है कि ये जो ट्रबल्ड एस्केलेशन है न्यू दिल्ली का जो इसके वैली के अगेंस्ट वो दिखाया जा रहा है। ये जो लोग हैं यहाँ पे उनको बोलने की जो इजाजत नहीं है, तो जो ये शो कर रही है जो कि बिल्कुल ही एक चीज डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होती है, विच इज इनटॉलरेंस, वो इनटॉलरेंस जो है वो शो की जा रही है, जो कि एक सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो हैवी हैंडेडनेस है जिसमें कि लोगों को बताया जाता है कि आप फ्री नहीं है आप जो करना चाहते हैं, या फ्री नहीं है जो आप बोलना चाहते हैं, या फ्री नहीं है कि आप जो लिखना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो है ये स्वीपिंग चेंज कैसे हुई। स्वीपिंग चेंज उस वक्त आती जबकि पूरे बाकी के हिंदुस्तान की तरह इनको भी वो सारे जो है वो राइट्स दिए जाएं और इनको भी वैसे ही ट्रीट किया जाए, क्योंकि बाकी हिंदुस्तान में जो लोग कहना और बोलना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वैसे ये तो इतना करेक्ट नहीं है क्योंकि बाकी भी हिंदुस्तान में लोगों की बोलती जो है वो बिल्कुल ही बंद की हुई है। तो बहरहाल वो कहते हैं जी कि ये जो हम सोच रहे थे कि बहुत सारी डेवलपमेंट आएगी और बिल्कुल ही कश्मीर का नक्शा बदल जाएगा आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद, वो अभी तक जो है इसमें देखा नहीं जा रहा है। और इसके अंदर अफसोस की बात यही है कि वहां के जो लोग हैं वो डे टू डे अपने के जो मामलात भी जो हैं उसके अंदर डरे और सहमे रहते हैं। वैली के अंदर आज भी एक डर और सहम का जो है वो माहौल है, और अगर कश्मीरियों को इसी तरह से ट्रीट किया गया तो फिर मतलब है कैसे चलेगा। ये है जी इनकी, तो ये बड़ी आज की एक अफसोस वाली रिपोर्ट थी, तो मैंने सोचा कि आपको ये आज चूंकि बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है तो हमको जरा थोड़ा सा कश्मीरियों के साथ के लिए आवाज थोड़ी सी उठानी चाहिए, है जी ऐसे। और जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह, ऑल स्टेट के साथ हैं और कहते हैं जी मैं आपको बिल्कुल राइट कवरेज दूंगा गाड़ी की और घर की। अगर आपके पास दो गाड़ियां और एक घर है तो आप इनको जरूर कॉल करें। राजा बादशाह जी जो हैं उनका नंबर है 6472903773। और जनाब 10 अगस्त को 10 आर्टिस्टों के साथ जो हैं वो नासिर शाह साहब बड़ा जबरदस्त ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। फ्री एंट्री है और ब्रैम्पटन फ्री ग्राउंड जो कि ब्रैम्पटन में नहीं है वहां पे ये इवेंट हो रहा है, कैलेडन में है। तो आप 12942 हॉट लेक रोड के ऊपर ये करने जा रहे हैं, तो आप जाके ये जरूर करें अगर आपको अटेंड करें। अगर आपको स्पॉन्सरशिप या स्टॉल का बुकिंग चाहिए तो नासिर शाह साहब को फोन करें 8416940039 या के वकास सैयद साहब को आप कॉल कर सकते हैं 8647712700। आप इनको कॉल कर लें, ठीक है जी। अच्छा जनाब हमारी दूसरी स्पेशल रिपोर्ट बांग्लादेश की जो शेख हसीना वाजिद हैं जो प्राइम मिनिस्टर जो भाग गई हैं अपने मुल्क से उसके ऊपर है। और बांग्लादेश की ये जो खबर है ये तो आपने सुबह से ही देखी होगी। शेख हसीना जो हैं उन्होंने फिर रिजाइन किया जो बहुत कई हफ्तों से मैसिव किस्म के चल रहे थे यहां पे जो प्रोटेस्ट उसके होते हुए, और आर्मी जो के जो चीफ थे जनरल वकारुज्जमा उन्होंने फिर कहा कि जनाब ये जो कोटा सिस्टम के होते हुए ओवरवेलमिंग प्रोटेस्ट चल रहे थे इसकी वजह से उन्होंने शेख हसीना ने जो कि 76 इयर्स की हैं उन्होंने मुल्क छोड़ा और वो भाग के चली गई हैं हिंदुस्तान। बहुत सारी खबरें आ रही थी कि पता नहीं शायद वो जो है वो किस स्टेट में है, वेस्ट बंगाल में है या त्रिपुरा में है, कहां पे हैं, लेकिन बहरहाल पता यही चला कि एटलीस्ट बांग्लादेश छोड़ के वो चली गई हैं। जनरल जो वकार हैं उन्होंने यही जो है वो इतला दी जिस वक्त ये गई हैं वकारुज्जमा ने। इन्होंने कहा जी कि मैं प्रेसिडेंट साहब से मिलने जा रहा हूं, और ये फिर जाके प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिले और उन्होंने उनको कहा कि भाई आप एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप करें, यानी कि देखें डेमोक्रेसी वहां पर कितनी जो है जान पकड़ चुकी है कि मिलिट्री ने कू नहीं कर लिया, मिलिट्री ने कहा कि भाई एक सिविलियन गवर्नमेंट जो इंटरिम पीरियड में है उसको आप लेकर आए। जमान साहब का थोड़ा सा हम आपको हिस्ट्री बता दें, 58 इयर्स इनकी एज है और इन्होंने आर्मी चीफ के तौर पे ड्यूटीज अपनी ली थी June 23rd को फॉर 3 इयर्स, वहां पे 3-3 साल की जो है वो होती है इनकी टर्म होती है आर्मी चीफ की। ये पैदा हुए थे ढाका में 1966 में एंड ही इज मैरिड टू शहनाज कमालिका जमान जो कि डॉक्टर हैं जनरल मोहम्मद मुस्तफीसुर रहमान की। आपको पता है कि ये जो थे शेख मुजीब उनके ये कजन भी लगते हैं। तो ये आर्मी चीफ थे बिटवीन 1997 से 2000 में। तो जो जनरल साहब हैं उनके पास मास्टर्स की डिग्रीज हैं जी डिफेंस स्टडीज से फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश एंड मास्टर्स ऑफ आर्ट्स फ्रॉम डिफेंस स्टडीज फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन, वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है उधर से हैं। हसीना साहबा जो है वो भाग के आर्मी के हेलीकॉप्टर में अपनी बहन के साथ वेस्ट बंगाल में इंडिया में पता चला था कि गई थी, और जैसे मैंने बताया एक रो और रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक वो त्रिपुरा में गई हैं। टीवी के जो विजुअल्स बहरहाल जो नजर आ रहे थे उसमें देखा गया कि हजारों ही लोग इस न्यूज के बाद ढाका की स्ट्रीट्स के ऊपर सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे वो फिर इनके जो ऑफिशियल रेजिडेंस था गना भवन उसके अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने बहुत सारे नारे लगाए। कुछ लोगों ने मुक्के जो हैं और विक्ट्री साइंस दिखाए, और कुछ लोगों को फिर देखा गया, जाहिर है कुछ और भी आ जाते हैं, उनको देखा गया कि वो जो है ये पीएम हाउस से टीवी और चेयर्स और ये टेबल्स और ये सारा कुछ लेके जो थे ये भाग रहे थे। कभी किसी जमाने में जाहिर है कि ये मोस्ट प्रोटेक्टेड बिल्डिंग होती थी बांग्लादेश की, लेकिन उस वक्त ये आज चीजें लेके भाग रहे थे। प्रोटेस्टर्स जो थे वो कुछ देखे गए ढाका के अंदर, जो इनके वालिद साहब का शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू है उसके के भी सर के ऊपर चढ़ गए थे और उसको जो है हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने जो है मार्च आज के दिन पे बुलाया था ढाका के अंदर, हालांकि ढाका के अंदर कर्फ्यू था और उनको जोर दिया था कि वो बिल्कुल रिजाइन करें। ये जो हंगामे कई दिनों से शुरू हुए हैं, कई हफ्तों से, बल्कि उसमें 250 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी हैं। आज भी 6 लोगों की डेथ हुई जतरा बड़ी ढाका मेडिकल कॉलेज के अंदर। 400,000 जो हैं लोग वो स्ट्रीट्स पे देखे गए कुछ मीडिया के मुताबिक। कहा जा रहा था कि शेख हसीना जो कि 76 ईयर्स की हैं उनका बहुत ही ऑटोक्रेटिक रूल रहा और पांचवीं दफा ये इस दफा प्राइम मिनिस्टर बनी थी जनवरी के अंदर। ऑपोजिशन ने ये जो हुए थे पोल्स उनको बॉयकॉट किया था और उनको कहा था कि ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर नहीं है और इन्होंने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के अब्यूजेस जो थे उनका इनको शेख हसीना को इल्जाम दिया था। बांग्लादेश उन मुल्कों में से था जिसके बारे में किसी जमाने में हेनरी कसिंजर ने कहा था कि ये बिल्कुल इररिडीमेबल बास्केट केस है, लेकिन जिस वक्त शेख हसीना ने पहली दफा वो आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं बांग्लादेश को एक प्रॉस्परस और डेवलप्ड कंट्री बनाऊंगी, किसी ब्यूरोक्रेसी की किसी की जोर जबरदस्ती नहीं सुनूंगी और मुल्क को तरक्की के रास्ते पे लेके जाऊंगी। शी वॉज जस्ट अबाउट 27 ईयर्स ओल्ड जब मिलिट्री ने इनके वालिद साहब शेख मुजीबुर रहमान जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उनको, उनकी वालदा को, उनके तीन भाइयों को, जो 1975 का मिलिट्री कू आया था बांग्लादेश में उसमें मार दिया गया था। She lost 18 family members and household staff in that coup. ये जो थी उस वक्त बाहर थी, जब 6 साल के बाद ये वापस आई तो इन्होंने अपने वालिद साहब की अवामी लीग जो थी उसको संभाला दिया और उसके बाद 10 साल तक दिन रात मेहनत की जिसमें कि इनको हाउस अरेस्ट के सामने करने पड़े। इनको नजर आया कि इनकी जो दूसरी राइवल हो सकती थी लेकिन उस वक्त इन्होंने खालिदा जिया जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से थी उस वक्त सोचा कि इनके साथ अलायंस बनानी चाहिए और ये जो डिक्टेटर हैं हुसैन मोहम्मद इरशाद इनको जो है निकाला जाए और उनको निकाला भी गया था, मिलिट्री डिक्टेटर थे ये 1990 में। उसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और इन दोनों की जो है फिर कभी भी बन ना सकी और ये जो अपोजिशन थी उसके अंडर शेख हसीना ने फिर उनको काफी ज्यादा दुख भी दिए। शेख हसीना सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1996 में लेकिन बट शी लॉस्ट टू खालिदा जिया 5 इयर्स लेटर। उसके बाद जो है इन दोनों को ही जेल में डाल दिया गया था करप्शन चार्जेस पे इन 2007 जब मिलिट्री ने कू फिर से एक दफा किया था। उसके बाद ये चार्जेस जो थे इनके खिलाफ ड्रॉप करके इनको फिर से जो इलेक्शंस हैं वो कंटेस्ट करने की इजाजत दी थी जिसके अंदर शेख हसीना को लैंडस्लाइड विक्ट्री जो थी मिली थी और उस वक्त से अब तक ये पावर में थी। जिया जो है खालिदा जिया 78 ईयर्स उनकी भी एज है उनको जो है इस वक्त जेल में डाला हुआ था। उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी, उनको हॉस्पिटल और जेल के बीच में जो है मूव किया जाता था। उनको 17 ईयर्स प्रिजन दी गई थी फॉर ग्राफ्ट चार्जेस इन 2018। इसके अलावा जो टॉप बीएनपी यानी कि जो खालिदा जिया के जो पार्टी के लोग थे उनको भी जेल में शेख हसीना ने डाला था। बांग्लादेश जो था इट वॉज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज जब इसको इंडिपेंडेंस पाकिस्तान से मिली थी 1971 और उसके बाद से इसने ऐसी फ्लाइट पकड़ी अंडर शेख हसीना कि इसकी हर साल जो ग्रोथ होती थी जीडीपी वो 6% से ऊपर रहती थी और सिंस 2009 तो बिल्कुल ही 6% से ऊपर जा रही है। इसका जो पॉवर्टी लाइन के जो लोग थे वो सारे ऊपर हौले हौले आना शुरू हो गए और जो है 95% ऑफ 170 मिलियन की जो पॉपुलेशन है उसके पास इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी भी है और उसकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा चली गई थी 2021 में अकॉर्डिंग टू सम मीडिया रिपोर्ट्स। यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे 2021 में बांग्लादेश के ऊपर क्योंकि उन्होंने कहा था जी कि इनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा जुल्म कर रही हैं ऑपोजिशन के ऊपर और उसके जो 7 ऑफिशियल्स थे टॉप ऑफिशियल्स बांग्लादेश के ऊपर उनके ऊपर भी चार्जेस लगाए थे फॉर वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। आज जिस वक्त ये भाग के गई हैं तो उस वक्त प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है उन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर दिया कि खालिदा जिया को जेल से छोड़ा जाए जिनकी की हालत बेइंतहा खराब है। इस वक्त जो शेख हसीना के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं वो उनके बेटे जॉय हैं और बहुत ही पढ़े लिखे हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं और बांग्लादेश के अंदर अपनी मां के साथ मिलकर डिजिटल बांग्ला जो इनिशिएटिव था वो चलाते थे। इन 2007 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इनके बेटे जॉय को यंग ग्लोबल लीडर का दिया था टाइटल दिया था फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डिजिटल बांग्लादेश इनिशिएटिव और उसके लिए बहुत सारी जो है वो तरक्की इसके अंदर आई थी। आज का ये जो वाक्य है ये शो करता है कि अगर किसी मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर कोई चीजें सही से ना चलें तो उसकी जो कौम है वो उसको चेंज कर सकती है, नेशन जो है वो बदलाव लाई जा सकती है। अलबत्ता अनफॉर्चुनेटली आज लोगों ने बांग्लादेश की तरफ बड़ी हसरत से देखा पाकिस्तान में, क्योंकि यहां पे लोग जो है हालांकि सड़कों पे निकले भी फिर भी चेंज ना आ सकी, उसकी वजह आपके सामने ही है। आज मिलिट्री ने बांग्लादेश में कहा गवर्नमेंट को कि आप एक सिविल इंटरिम सेटअप बनाएं, जबकि इस तरह का अनरेस्ट जब पाकिस्तान में आता है तो मिलिट्री जो है वो टेक ओवर करती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये हैं वो पढ़े लिखे लोग जिनको 1971 में हमने अपने से हटाया, हमने इनको हकीर जाना, हमने इनको कहा ओ ये तो बंगाली हैं इनको क्या पता, हालांकि मुस्लिम लीग जो थी वो सेटअप ही बंगालियों ने की थी, बंगाल के जो थे नवाब थे उन्होंने फंड किया था मुस्लिम लीग को और मुस्लिम लीग उनकी वजह से चली थी। लेकिन जब पाकिस्तान बना ना तो हम मुजीबुर रहमान को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने को तैयार थे, या हम तो नहीं खैर कुछ जो अपॉर्चुनिस्ट थे उनको बड़ी तकलीफ थी, वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे तो उन्होंने मुजीबुर रहमान को ना तो वो जो इलेक्शन में जीते थे उस जीत को माना और ना ही उनको प्राइम मिनिस्टर बनने दिया और उसकी वजह से फिर बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ। तो ये थी जनाब हमारी आज की।
बिल्कुल जी, ये थी हमारी रिपोर्ट। और वो कहते हैं ना 71 की साजिश जी, आपकी रिपोर्ट बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन वो कहते हैं ना क्या हकीकत क्या फसाना, इसमें भी बहुत फैब्रिकेशन है। ठीक है, एज एन पाकिस्तानी उस वक्त कोई भी आम पाकिस्तानी नहीं चाहता था कि अपने बंगाली भाइयों को जो है वो अलग कर दें, जाहिर है एक खास किसी तबके ने या किसी लीडर ने या हमारे ऑफिसर्स लोगों ने अगर ये को प्लान कर लिया कि भाई बंगाली यानी बांग्लादेश बनने देना है या बंगाली, उस वक्त तो बांग्लादेश का वर्ड खैर बाद में आया, बंगाली को जो है वो अलग करना है, तो वो एक कहते हैं ना कि एक पर्सनल एक्ट था या जो भी था, साजिशें थी बाद में, वो भी आपको मालूम है सारी किस तरीके से इंडिया ने भी जो है रोल किया। बल्कि आज
इंडिया ने अपॉर्चुनिटी उठाई, उसने फायदा उठाया, उसने उस चीज का फायदा इसलिए उठाया कि बंगालियों ने इंडिया को हेल्प के लिए बुलाया, उन्होंने कहा कि हमें जो है पाकिस्तान मिलिट्री मार रही है,
यही तो यही तो सवाल है, ये जो ये
मार रही है बचाओ तो आओ हमें बचाओ,
यही यही गड़बड़ है।
फिर इंडिया ने
मिलिट्री मार रही है, होता क्या है कि चीजें कुछ जो है वो कहते हैं ना इंसान टू इंसान पहुंचते पहुंचते बहुत ही फैब्रिकेटेड हो जाती है। अब मार रही थी, क्या कर रही थी, सामने से जो है मुक्तिबानी के लोग कौन थे, क्या रोल प्ले अदा कर रहे थे, ये सब जब मोदी जी भी जब आए तो बाद में उन्होंने भी खुल के इस चीज का एतराफ कर लिया था,
ट्रेंड था इंडिया,
ठीक है, और जिस तरीके से आज भी वो उड़कर गई हैं। अब आप देखें कि अगर मैं ये सोचा था, आज मुझे बहुत दुख भी हुआ एक तरीके से कि अगर आप देखें, ये अभी हम स्टैच्यू दिखा रहे थे जिसको नौजवान लड़के जो हैं वो
उनके वालिद साहब शेख मुजीब का, वो
आप वालिद साहब तो छोड़े, मेरी नजर में तो फादर ऑफ नेशन,
हाँ फादर ऑफ नेशन,
ठीक है सही कह रहा हूँ वर्ड,
हाँ,
सही
हाँ,
उस किया मैंने
यूज किया है।
अगर आज पाकिस्तान में कोई कायदे आजम के उस पर चढ़ के कुछ करने लग जाए तो हम क्या अपने फादर को भूल जाएंगे? अगर बंगाली में अपने आप को सोचूं, ठीक है उनकी बेटी साहिबा ने क्या किया,
बहुत
गलत किया, पूरी ऑपोजिशन को जिस तरीके से बंद करके रखा, जेल में डाल के रखा, खालिदा जिया की आपने बात बताई कि क्योंकि वो उनके साथ वही जो चंपलिश थी ना, जो जो नाराजगी थी वही कि उनके बाप ने इनको जो है वो तख्ता उल्टा, और जैसे वो सारी चीजें उन पीछे हिस्ट्री आपको मालूम है। लेकिन मेरा मानना ये कि जैसे कल को आज जितने भी यंग स्टूडेंट्स जो कुछ भी कर रहे थे उन्होंने अपने हक को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया, आपने रिजाइन भी ले लिया, लेकिन फादर ऑफ नेशन है वो आपके शेख मुजीबुर रहमान साहब। कल को अगर सबसे मैं एज अ पाकिस्तानी कहीं कायदे आजम का स्टैच्यू लगाओ मुझे उसमें और मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊं और उसको तोड़ना शुरू कर दूं, कैसे कैसे फीलिंग मुझे, तो मुझसे तो नहीं हो सकता कम से कम, चाहे यूं समझ नहीं चले कायदे आजम के आने वाली जितनी भी औलादें हैं, चाहे जुल्म कर रही हूं कुछ भी कर रही हूं, लेकिन फादर ऑफ नेशन तो आप उनकी जो रिस्पेक्ट करें ना, मुझे सिर्फ इस चीज का जो दुख था, आज मैं वीडियो सुबह से देख रहा
था कि हम क्या मिसाल ले रहे हैं, किसी के भी जैसे नेहरू साहब हैं या गांधी जी का जो कोई स्टैच्यू है, तो अब कोई जो है वो अब जैसे कि बीजेपी वाले पसंद तो नहीं इनको करते हैं, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कभी भी नहीं किया ना कि नेहरू का मुजस्मा कोई तोड़ा होए या गांधी जी का कोई तोड़ा होए उन्होंने।
तो रिस्पेक्ट भी जो है वो नए बच्चों को समझनी चाहिए कि वो
हालांकि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में सारी प्रॉब्लम्स ही नेहरू जी की वजह से है,
लेकिन
उनका स्टैचू तो कभी नहीं तोड़ा,
स्टैचू तो नहीं, एक रिस्पेक्ट होती है। इसी तरीके से कहीं भी हो किसी भी चीज के जो होनी चाहिए, आपके फादर ऑफ नेशन रहे तो आपने कम से कम, और जो आज हाल हुआ जो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का बता रही थी, लोग वहां बैठ के बिरयानी डूट छोड़े, कुछ वीडियो में देख रहा था वहां बिरयानी
के अंदर
जो है खाने बड़े थे वहां
कर रहे थे,
दोपहर में जाहिर
है
लोग ले जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। अच्छा एक ये हो गया,
बेड पे लेटे हुए हैं,
बेड पे लेके तस्वीरें जा रहे हैं, उनकी टेबल पर चढ़ गए। अच्छा अब आप देखें जो आवाम होती है ना वो हर जगह की एक जैसी होती है, यही आप कहते हैं कि चलो यार ये बांग्लादेश, यानी हम कहते हैं ना हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रहने वाले हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका, जहां इस तरह आप देखें यूके में क्या हो रहा
है, ओ माय गॉड,
लोगों
ने आपके वर्ड क्या यूज किया आपने मेरे सुने, जलाओ घेराओ मारो,
अरे दुकानें लूट के जो आप बात बता रहे हैं, पूरी पूरी दुकानें लूट के लिए आ रहे हैं। अच्छा उसमें तो
मुसलमानों के बिजनेसेस जला दिए, गाड़ियां जला दी,
गोरेंस उसमें जो है
उन्होंने
ब्राउन जो है वो हेयर हैं, ब्लॉन्ड आई क्या कहते हैं वो आईज हैं,
ग्रीन
आईज हैं,
तो वो ब्राउन्स के अगेंस्ट कर रहे हैं,
ब्राउन्स के अगेंस्ट कर रहे हैं,
वो उनकी गाड़ियां और बिजनेसेस जला रहे हैं, वो तो जलाओ गिराओ चल रहा है, पकड़ के मार रहे हैं मुसलमानों को। आपने देखिए जो वीडियोज आई है मुसलमानों उसके ऊपर इसने बल्कि स्टेटमेंट दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि ये तुम लोग जो कुछ जानवर बना दिखा रहे हो ये हम बिल्कुल एक्सेप्टेबल, हम नहीं करेंगे, और अगर ये पुलिस जो है हमारी आम पुलिस नहीं कर सक रही तो पूरा हमारे पास एक जत्था है स्पेशल पुलिस का जो हम अब उतारेंगे स्ट्रीट्स के ऊपर।
तो ये सब जो है ना वो दुनिया भर में इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं, जैसे कि आज जो है वो नाइजीरिया में ये सब चीजें उनकी हुकूमत के खिलाफ जो है बदमनी सारी चीजें वहां शुरू हो गई हैं, लोग सड़कों पर निकल आए
आपके
सामने, तो ये दुनिया में फिर ईरान का और ये देखें मसले मसाई चल रहे हैं। अब अगले 24 घंटे जो है वो कहा ये जा रहा है कि बहुत ही जो
मैंने
है
वो इम्पोर्टेंट है, एंथनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट है ना कि इन द नेक्स्ट,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईरान उस तरीके से नहीं हमला करे, यानी उस और करना भी नहीं चाहिए, इसको बैठ के किसी तरीके से मामला तय कर लेने चाहिए,
बैक टू बैक उनके दो बंदे पहले कासिम सुलेमानी,
लेकिन शाहजी जी मैं आपको एक बात बताऊं,
बंदा मार,
बिल्कुल सही है, मैं भी इस न्यूज को काफी कवर कर रहा था, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की भी रिपोर्ट पढ़ी जो कहते हैं कि इनको एयर स्ट्राइक करके नहीं मारा, इनको जो है वो होटल जहां ये रुके हुए थे, जी मैं वही कह रहा हूँ, कोट मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की ही कोट कर रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि वो आपके घर में कोई शख्स आता है,
वो कहते हैं उन्होंने रिमोट कंट्रोल से तो उधर बड़ा अरसे पहले
कितने अरसे पहले उन्होंने बॉम्ब फिट कर दिया,
फिट किया हुआ था,
तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसी यानी आपका जो काम है सारे मेरे नजदीक जिम्मेदारी ईरान के ऊपर भी बनती है, इतनी हाई प्रोफाइल
आपके, तो वो कह रहे हैं ना कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारे मुल्क में वो मरा है तो अब हम इसका बदला लेंगे,
तो ये मसला यही है ना, ये जो बदला है अब मुझे बताया बदला लेके क्या करेंगे, चार मिसाइल मार देंगे, वो आयरन डोम उनका जो है और इनका जो एक और शील्ड है जिसको मैं पढ़ा स्लिंग है डेविड स्लिंग, ये इतने मजबूत इनके बैरियर्स हैं कि दो चार जाके रॉकेट जो है ना मैदान में गिरेंगे,
लगते ही नहीं है उनके अंदर जाते ही नहीं है,
उसके अगेंस्ट क्या होगा, वो अपने फाइटर उड़ा दिए ना जिस दिन एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दी, तो ये आग बहुत आगे तक चली जाएगी और ये कॉन्फ्लिक्ट जो कहते हैं ना कि
इसीलिए तो आप देखो ना सारे वो जो ये बड़े बड़े हैं इनके अमेरिका के वो सारे मिडिल ईस्ट में इस वक्त बैठे
और जरूरी है
सारे बड़े, को
बेसिकली मुझे लगता है कि इस वक्त जितने भी बड़े हैं ममालिक जिसमें आप कह लें अमरीका कह लें
बाइडन सिर्फ उधर
या रशिया कह लें चाइना कह लें या यूके कह लें, मतलब इस वक्त किसी भी हाल में इसराइल को लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखें मिडिल ईस्ट में आग का मतलब ये नहीं है कि आप उस आग से बच जाएंगे, वो आग आपके घर भी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा,
इसीलिए तो मैंने आपको भी सुनाया भी ना कि फ्रांस के भी वो जो है वो मोहम्मद बिन सलमान से भी आज उन्होंने बात
की, इसीलिए मिल रहे हैं
यूएई के प्रेसिडेंट से भी
आप बात की, लेकिन जाहिर है आपको पता है कि नेतन्याहू का जो इस वक्त आई डोंट नो
कुर्सी बचानी है ना,
शायद मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी नहीं कुर्सी क्या बचेगी,
कुर्सी बचानी है,
आपने कोविड के टाइम देखा था इनकी कितनी क्या इनकी हालत हो गई थी, सब कुछ हो गया था, अब आप कुर्सी एक बचाने के लिए ठीक है आप करोड़ों लोग जो हैं वो स्टेक
ये तो अमेरिका और उसके जो सारे एलाइज कह रहे हैं ना 40,000 मर गए 40,000 नहीं एक्सियोस की जो रिपोर्ट थी 138,000 लोगों को मार दिया इन्होंने पैलेस्टाइन के अंदर
और उसमें मासूम बच्चे
ऐसे नहीं कि बच्चे बूढ़े
हर औरतें हैं कई लोग हैं, तो ये सब सिलसिला जो है वो आपको पता है कि मामला बहुत आगे जो है चल रहे हैं, जिस तरीके से जो स्टॉक एक्सचेंज डाउन की गई इंटरेस्ट रेट की वजह से यूएस की, फिर यूएस के इलेक्शंस भी आ रहे हैं
नवंबर में,
तो अब इस वक्त यूएस किसी भी किस्म के वो कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट
तभी तो उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे भेजे हैं
करने के लिए। लेकिन मसला है ना कि इजराइल सुन नहीं रहा इस वक्त। आपको पता है एंथनी ब्लिंकन साहब भी हैं, जो बाइडन ने भी, इवन जो बाइडन साहब ने भी जो है वो कई बार बयान देकर उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है वो रुकने के लिए तैयार नहीं
है। जो साथ जो उसके अलायंस में है ना, उसके गवर्नमेंट के अलायंस में जो फार राइट के जो लेफ्ट के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर तुमने ये किया, दोस्ती बनाई, सीज फायर किया, बस फिर हम तुम्हारे साथ अलायंस में निकल आएंगे और उसकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लोगों को मरवा रहा।
चलिए देखते हैं जी, वो अपनी कुर्सी बचाते हैं या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है ले जाते हैं, क्योंकि ईरान पर हमला करना या लिबनान पे फायर करना वो मुझे
बंदे के मार दिए अभी बॉर्डर के एरियाज के अंदर जो है वो
बहुत मुश्किल हो जाएगा।
25 बंदे मर गए हैं।
तो जनाब आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, 8:15 बजे तक हम आपके साथ हैं। 4166201778 हमारा नंबर है। और एक सवाल रह गया था कि जो शाजा जी ने अब तक जवाब मुझे नहीं दिया है।
नहीं नहीं, पहले आप वो ना अफ्रीकन लायन सफारी का आप करें, शाजा जी वो खींचना आप छोड़ें।
नहीं नहीं, पहले मैं पहले आप जवाब दें। देखिए आप अपने, क्योंकि आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ आई एम प्राउड कि मैं तो गवर्नमेंट बॉय सेकेंडरी स्कूल,
हमारी तो
पूरा एड्रेस करीमाबाद कराची दिल्ली, और तो मैं दिल्ली स्कूल से पढ़ा हूँ, सोचिए कराची में रहते हुए भी, और मैं दिल्ली स्कूल में पढ़ता था।
हमारी क्या हैसियत है, हम तो फैमिली है बस।
तो वो आप मुझे बताइए कि साइकिल के भी कुत्ते होते हैं?
बस नहीं, पता नहीं है मुझे, मैंने तो जो कहानी सुनाई
है आपने खासी गलत सुनाई ना।
अच्छा,
वो कहानी बिल्कुल फ्लॉप है।
अच्छा फ्लॉप है,
उस पर कुत्तों का कोई ताल्लुक ही नहीं।
अच्छा ठीक है,
तो रेस में दौड़ रहा था।
अच्छा दौड़ रहा था, ओके।
साइकिल के कुत्ते होते हैं।
अच्छा अच्छा, साइकिल के कुत्ते।
इस पर आपने जो है वो मुझे
देनी है,
बताना है कि आपको पता है।
आप बताओ।
नहीं बस फिर मैं नहीं, आपको आपके जो 1 मिलियन फैन है उनमें से कोई 1 मिलियन आ जाएंगे, वो आपको बता देंगे। क्योंकि देखें आप, मुझे लगा कि आप पी फॉर पाकिस्तान है, आपको आता होगा।
अच्छा पहले तो आप वो भी बता दें, वो जो लायन अफ्रीकन लायन सफारी जो है उसमें आमिर साहब ने आपसे कहा था कि ये पूरा हफ्ता, क्योंकि फ्राइडे को हमने निकालने हैं ड्रॉ, तो आप ये पूरा हफ्ता जो है आपने हमको बताना है कि भाई आप जाएं हमारे टिकटॉक के ऊपर, हमारे जो है वो उस पर जाएं, आप इंस्टाग्राम पे और हमारी वेबसाइट पे आप जाएं और उसको आप हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करें और टिकटॉक और जो हमारा इंस्टाग्राम है उसको आप लाइक करें, तो फिर आप जो है आमिर ने कहा था एक मैसेज भेजें हमको,
अपना नाम लिखें लायन सफारी।
हाँ, और लायन सफारी लिखें आप, और अफ्रीकन नहीं लिखना, सिर्फ
लायन सफारी लिखें।
चलो लायन सफारी
लिखेंगे, समझ जाएंगे।
आमिर बड़ा इंटेलिजेंट है, समझ जाएगा। तो वो आप भेजें तो वो आपको एक पूरा फैमिली पैक जो $200 का है वो आपको मिल सकता है, जिसमें दो लोग बड़े यानी कि माँ और बाप और दो उनके बच्चे जा सकते हैं।
हमारे साथ जो है वो कॉलर थे, अच्छा डिस्कनेक्ट कर गए, लेकिन एक और कॉलर है, देखें वो क्या ना क्या कहना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे साईं कैसे हैं?
बंधन साहब क्या कर रहे हैं, ये कराची और लाहौर की लड़की और लड़के में क्या लड़ाई होती है?
नहीं नहीं साईं, किधर लड़ाई हो रही है, तो प्यार मोहब्बत है।
अच्छा चलो ये तो शुक्र है। अभी मैंने इनकी बड़ी अच्छी रिपोर्ट सुनी, और उस आयरन लेडी ने बंगले बंगाल से उसको बंगला बंगाल बना दिया। लेकिन पता है मैं ऑन एयर हूँ या ऑफ एयर?
आप ऑन एयर हैं जनाब।
हाँ तो मैं वो यूट्यूब पे और काफी इंडिया के चैनल पे जनाब ब्लेम गेम इंडिया की जो मीडिया लगा रही है, ये जो जनाब अमेरिका, पाकिस्तान, आईएसआई, फिर जमात इस्लामी पूरी कड़ी मिला रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट है उनको। अरे भाई उसने जो है ना वहां कौम का जो अचर नकर कर दिया, जब कायदे आजम के होते हुए जो है ढाका यूनिवर्सिटी में 18 लड़के मर गए थे, फिर इन्होंने और इसके वालिद के जमाने में कुछ यही कुछ हुआ
जी।
तो जाहिर है हमारी आवाम आखिर तो तंग आ ही जाती है ना,
बिल्कुल ऐसी ना।
जहां तक बात है इनका शौक है अपना शाजिया का, तो ये कुछ पाकिस्तान च क्यों नहीं होंदा, इसलिए नहीं होंदा कि फौज भी ताड़ी पंजाब तो हैगी, और जदों तक पंजाब नहीं उठ खड़ा सकता उस वक्त पाकिस्तान के कुछ नहीं हो सकता।
सही है सर, मैंने तो खुद बड़ी दफा एतराज किया सर, मैंने तो खुद पंजाबी होते हुए बड़ी दफा एतराज किया है कि ये सारी का सारे के सारे
सही करो। हाँ, अपनी फौज नु सही करो पंजाबी नु।
हाँ हाँ हाँ,
पाकिस्तानी फौज बनाओ।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप सही कह रहे हो।
सही हो जाती फौज भी, सही हो जाता दिल्ली भी, सही हो जाता पठान भी, सही हो जाते हैं तो पूरा पाकिस्तान भी सही हो जाता।
सही कह रहे हो, सही कह रहे हो,
सिंध भी सही हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक है,
मैं तो क्यों ना कहूं सिंधी भी सही हो
जाएंगे। बिल्कुल सही, सही
कराची भी सही हो जाए।
सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं।
टीम को पहले क्रिकेट टीम को जो है पाकिस्तान की क्रिकेट बनाओ, उसमें सिंधी लड़के लाओ, कराची से कश्मीर तक बलोच लाओ।
कराची के तो बहुत सारे लड़के थे सर, टीम के अंदर कराची के बहुत सारे थे।
कहाँ वो नमक आते में नमक भी नहीं है। हम तो यही कहते हैं पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तानी फौज बनाओ,
ठीक हो गया,
सही है,
सिंधी बनाओ,
चले
सही है,
कमांडर बलोच बनाओ, कोई पठान बनाओ, सारे पंजाबी पढ़े हुए,
चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरदारी भाई,
सही है, सही है, सही है,
ऐतराज के करी जाने,
चले
सही है, सही है,
बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। ये थे जरदारी साहब हमारे साथ, कहते हैं जी पूरे
आज तो पंजाबी बोल रहे थे जरदारी साहब।
नहीं नहीं देखते हैं एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम। सलाम
वान सलाम, कैसे जनाब?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ साहब बड़े खुश हुए आपके जो आपने तजिया किया ना
जी।
वो बड़ा ही अच्छा था जो कि बांग्लादेश और ऑल दिस सिचुएशन
जी,
और वो बिल्कुल मतलब आपका नहीं आमिर का।
अच्छा जी आमिर का, ठीक है सर,
आमिर का बड़ा हक है, मतलब जो मतलब बगैर पर सोचे समझे नहीं बोला गया। दूसरी बात आप वो कुछ वो कुत्ते उत्ते का पूछ रहे थे, वो क्या है
सर? पता नहीं, ये अभी शायद जी से मैंने सवाल किया, आप इनकी हेल्प कर दें। साइकिल के कुत्ते होते हैं
भाई, वो उसके रॉड जो
होते हैं, वो
रॉड होती है ना, उसमें जो ताड़ियां जो तारे होते हैं उसको कहते हैं, और क्या
बताए शायद जी को?
क्या 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 सॉरी फिर से बोला?
साइकिल की जो तारे होती हैं उसको कहते हैं
साइकिल के कुत्ते, उसको बोलते हैं।
हाँ ये उनकी मतलब अपनी जुबान है साइकिल वालों की, जो साइकिल रिपेयर वगैरह करते हैं।
अच्छा, ओहो बड़ा ज्ञान मिला भाई,
ये एक इन्फॉर्मेशन आ गया। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल कर देंगे। ओके जी। अच्छा ये तो इन्होंने अपने एक स्टाइल में बता दिया ना। एक और एग्जांपल, क्योंकि अब मेरा दिमाग वो कहता है ना, जब वर्ड आते हैं तो फिर पुरानी यादें, वो कहते हैं ना कि साइकिल के कुत्ते फेल हो गए।
अच्छा
ये कभी वर्ड सुना है किसी?
नहीं नहीं नहीं,
ये भी नहीं सुना।
नहीं नहीं साइकिल के कुत्ते फेल तो आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना, ये तो अब तुम अब मतलब अपनी तरफ से तुम कहानियां बना रहे हो ना, ये तो कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है।
अच्छा साइकिल के कुत्ते फेल नहीं होते।
अच्छा
अच्छा चले देख रहे थे, शायद आपको कोई आके बता भी देगा इसके बारे में भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
जनाब, कैसे
हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा ठीक हूं
जी सर।
ऐसा है खाली साइकिल के कुत्ते नहीं, सब आदमियों के भी कुत्ते होते हैं।
नहीं सर अभी तो साइकिल पे बात कर लेते हैं।
नहीं नहीं मेरी बात सुन ले।
नहीं नहीं पहले साइकिल पे।
अच्छा साइकिल के वाकई कुत्ते होते हैं, मगर मैं बता रहा हूँ बंदरों के भी होते हैं। ऐसा हुआ हम लोग हज पे गए तो वो शटल बसें चलती है ना मीना में
जो
लेके जाती है,
जी, जी।
तो एक लड़का उसने अपनी माँ को बुलाया था हज के लिए, तो वो बेचारी बुढ़ी थी तो उसको थोड़ा चल, तो वो खुद माँ को कहता है अम्मा जब अपने बंदरों के कुत्ते फेल हो जाते हैं ना तो हम लोग उनको हज पे बुला लेते।
मैं समझ गया, लेकिन शाहजी जी को अभी समझाना पड़ेगा कि साइकिल के कुत्ते फेल कैसे होते
हैं। साइकिल के कुत्ते होते हैं भाई, साइकिल के कुत्ते फेल होते तो वो बिल्कुल फ्री हो जाती है।
देखा आपने
तो सर,
ये मेरी बात को मानते ही नहीं है।
अब ये अब किस मुल्क के किस हिस्से में ये बोला जाता है साइकिल के कुत्ते? हमने तो कितनी साइकिलें चलाई, गिरते थे, चोटें भी कभी नहीं हमने देखा।
अभी मैं
सुना साइकिल के कुत्ते
सुना, ये पूरे पाकिस्तान में बोला जाता है,
पूरे पाकिस्तान में।
पता नहीं मैंने नहीं सुना जी, मैंने नहीं सुना।
इनका भी इम्तिहान
देखे ना, एक आपने नहीं सुना उसको
ये
नहीं नहीं मैंने तो ये कहा कि आप गलत कह रहे हो, मैंने कहा मैंने नहीं सुना वैसे।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके जी अल्लाह हाफिज। और शाजिया जी को जो है वो समझाना पड़ेगा कि साइकिल के भी कुत्ते फेल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जनाब, कौन सा?
साइकिल के जो कुत्ते होते हैं ना, वो जो ब्रेक शू होते हैं,
ये देखा आपने?
उसको कुत्ते कहते हैं, और वो जब फेल हो जाते हैं तो साइकिल जो है ना बेकाबू हो जाती है।
ये 100% करेक्ट आंसर इसको कहते हैं शाजिया जी, आपने देखा?
इनाम वगैरह है जवाब का,
पर ये शाजिया जी की इंशाल्लाह जो है
सर, ये इनाम जो है वो अफ्रीकन लायन सफारी का है, और वो तरीका आमिर ने बताया। आमिर जरा एक्सप्लेन कर दें इनको, फिर
मैं भी आपको बता देता हूँ सर। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और कुत्ते जो है वो फाइनल हो गए आपके?
अच्छा ठीक है जी।
साइकिल के कुत्ते फेल होना
ठीक है, हाँ।
ब्रेक वो आपको
अच्छा, ब्रेक।
वो ब्लैक रंग के रबड़ हाँ। लगे होते हैं साइकिल
अच्छा, अच्छा, आगे
उसको कहते हैं जी साइकिल
अच्छा,
कुत्ते
अच्छा अच्छा।
देखा कितनी नॉलेज आप मेरे साथ रहेंगी ना,
हाँ, वो आपके
इल्म में इजाफा ही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपको लगता है कि हर वक्त आदमी जो है ना बस फेंक रहा है, फिर मैं उल्टा शेर सुनाता हूँ ना तो फिर कोई ना कोई कॉलर आ जाएगा, मैं वो शेर भी नहीं सुनाऊंगा मैं बिल्कुल इस बार। मुझे आप जो है ना वो समझती हैं कि साइकिल के कुत्ते ने हमारे चीते को आपने कुत्ता बना दिया पहले। फिर कह रही है साइकिल के कोई कुत्ते नहीं होते लेकिन साइकिल के कुत्ते होते हैं। अब आपसे अगर कभी भी कोई कहे कि शायद जी साइकिल के कुत्ते जो हैं फेल हो गए तो आपको
पर वो उन्होंने बता दिया इंसानों के भी कुत्ते होते हैं
वो क्यों उस रीजन पे क्योंकि आपको पता है ना वो हज पर इतना रश और ट्रैफिक होता है वो पीछे से टकराया जाता है तो वो उस सेंस में कह रहे
हैं
जो जिन इंसान के जो है वो कुत्ते फेल हो जाते हैं वो आए क्योंकि वो ब्रेक तो लगता नहीं है आप चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। तो ये सिलसिला है हमारे साथ एक और कोई कॉलर है देखें क्या कहना चाहते हैं उनको भी कॉल शामिल कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब
अमर अफ्रीकन लाइन सफारी का प्लीज एक दफा फिर से प्रोसीजर सर।
अच्छा मैं अफ्रीकन लाइन सफारी की जैसे शाजिया जी बता रही हैं कि हमारे पास फैमिली पास है जिसमें चार लोग होंगे दो एडल्ट होंगे दो बच्चे बच्चे 3 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र के होने चाहिए यह शर्त है भाई जो उन्होंने हमें भेजा उसका। अब आपने करना क्या है कोई सवाल जवाब नहीं है कोई क्विज नहीं है किसी किस्म की कोई हथौड़ा है कोई कुत्ते फेल नहीं करने कुछ भी नहीं करना आपने आपने सिंपल ई आवाज के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें ई आवाज हमारा जो है इंस्टाग्राम बल्कि टिकटॉक पे जाइए पहले सबसे पहले टिकटॉक ई आवाज आप टिकटॉक पे जाइए ई आवाज वहां सर्च करिए आपको मिल जाएगा उसको फॉलो कीजिए और हमें इनबॉक्स कर दीजिए अपना नाम और लाइन सफारी लिखते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम है ई आवाज रेडियो सेम प्रोसीजर आपने इंस्टाग्राम पर भी करना है लाइक करना है उसको फॉलो करना है और इनबॉक्स कर दें अपना नाम और लाइन सफारी। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आपने लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है बस ये 3 काम आपने सिंपल सिंपल से कर लेने और आप जो है इस कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे कि हम जो है वो आपको एक फैमिली पास लाइन सफारी यानी 2 एडल्ट और 2 बच्चों का आपको बिल्कुल ही फ्री तकरीबन $200 के करीब करीब है इसकी वैल्यू तो वो आपको हम बिल्कुल ही फ्री 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 दे देंगे बिल्कुल फ्री पार्किंग दे देंगे बिल्कुल फ्री एंट्री होता है ना कि बहुत सारे शो हो रहे होते हैं फ्री एंट्री लाइन सफारी में आपकी सर फ्री एंट्री करा देंगे हैं शर्जी
बिल्कुल।
और आप सिर्फ अकेले नहीं आप फैमिली के साथ जाएं ये नहीं एक किसी को ले जा रहे हैं दो ले जाएं सर आप अपनी एक वाली बीवी और उसके जो 2 बच्चे हैं उनको आप अपने साथ ले जाएं
उसी बीवी के 2 बच्चे
देखें ये पर्सनल अपने अपने मामला हैं इस पे मुझे कोई भी इख्तियार नहीं है कि
उधर प्रॉब्लम हो जाएगी ना अगर बीवी दूसरी और बच्चे दूसरे तो फिर
बीवी दूसरी ले जाए बच्चे पहली वाली के लिए
हाँ तो ये भी फटे पड़ेंगे ना तो इसलिए
फटे पड़ जाएंगे
फटे पड़ेंगे तो जो बीवी साथ लेके जा रहे हो
उसी के बच्चे लेकर जाए जो बीवी आप साथ ले जा रहे हैं उन्हीं के बच्चे ले जाए तो फिर आपका मजा जो है वो दोबाला हो जाएगा ठीक हो गया
ठीक है जी
तो एक छोटा सा और ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो हमारे जाने का भी टाइम आ गया
ठीक है
बल्कि मुझे लगता है शाजिद जी अब आप इजाजत दे दें
अच्छा ठीक
हाँ क्योंकि आप जो है ना वो आज आपको मैंने बहुत कुछ वैसे ऑलरेडी सिखा दिया आपको आज मैंने क्या सिखाया
इंसानों के कुत्ते साइकिल
इंसान के इंसान के कुत्ते साइकिल
के कुत्ते इंसानों के नहीं वो जो दूसरे अब तुम मुझे कहते हो जो हमारे आते हैं बड़े नॉलेजेबल हैं हमारे जो लिसनर्स हैं तो अब वो उनकी बात आप सुनो और ये उनकी बात मानो तो अब एक ने कहा साइकिल के कुत्ते एक्सप्लेन किया दूसरे ने बंदों
इंसान के भी कर दिए
इंसान के भी
वो एक खास सिनेरियो देखें क्या होता है जैसे कंडीशंस होती हैं ठीक हो गया ना वो कंडीशंस की बेसिस पर उन्होंने बताया कि जब आप हज पे अफर होते हैं तो वो सिचुएशन आपके सामने फेस हो जाती है बाकी साइकिल के कुत्ते तो नॉर्मल है ना आम चाल है साइकिल के कुत्ते जैसे फेल हो जाते हैं तो वो किसी के भी हो सकते हैं ना
अच्छा
इसमें मतलब साइकिल ना ब्रेक लगा तू थोड़ा एहतियात के साथ
अच्छा अच्छा
ठीक हो गया
ठीक है जी
चलिए जनाब बहुत शुक्रिया आपका
थैंक यू अमर
है
ठीक है जी थैंक यू अमर
थैंक यू करिए थैंक यू
तुमने कहा जाओ मतलब तुमने इतनी बेइज्जती
की नहीं मैं मस्ती में आपसे आप दिल पे ले लेती हैं अभी मैं टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक ले लेता हूँ और ब्रेक के बाद हम आते हैं 8:15 तक हैं तो 2-4 मिनट 5 मिनट थोड़ी और बात कर लेंगे आपकी साइकिल के कुत्ते जो हैं वो सही करा देंगे क्योंकि फेल हो गए
ठीक है फेल हो गए
तो उसको सही करते हैं और ब्रेक ले लेते हैं टॉप ऑफ द आवर का फिर वापस आते हैं हमारा नंबर 4166201778
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें CIBC.com/cashpickup पर जाएं शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मोईशत की तरक्की का जामिन
आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यू थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी, क्विक ट्रक ल्यू 519-622-0660, quicktruckcube.com।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
چاندنی
بینکوئٹ ہال
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز